نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم آج کی اس محفل میں ہلکا سا خلاصہ کریں گے کہ سورۃ فاتحہ ہر نماز کا حصہ کیوں ہے. یہ کوئی تفسیر نہیں ہے, الحمدللہ اس کی تفسیر بہت ہوئی ہوئی ہے, نہ اس وقت ہم کوئی اس کو قرآن کی اور احادیث کی روشنی میں سمجھیں گے. ہم صرف سورۃ فاتحہ کو اس اینگل سے سمجھیں گے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کیوں, اور اس کے بعد جب انشاءاللہ اگلی ہی نماز ہم پڑھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جب میں نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتی ہوں تو کیا واقعی میری وہی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. اور کیا ہے؟ الرحمن الرحیم, رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور کیا ہے؟ مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. اتنی تعریفیں جب اس کی کر دیں تو پھر دل چاہا کہ اپنی بھی اوقات بتائیں. یہ تو رب ہے تو میں کون ہوں؟ ایک آیت, ایاک نعبد ویاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ تین آیتوں میں رب کا تعارف, رب کی صفتیں, رب کی تعریف, اور ایک آیت بالکل چھوٹی سی جو اگر آپ مصحف پہ لکھی بھی دیکھیں تو ایک پوری لائن بھی نہیں بنتی, آدھی لائن ہے صرف. اور ایاک نعبد ویاک نستعین, میری اوقات یہ ہے کہ میں تیری بندی ہوں, میں تیری غلام, تو میرا آقا. اور جو چھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے بڑے سے مدد مانگتا ہے, اس لیے ویاک نستعین, مدد تجھ سے ہی مانگوں گی. اور جب مانگنے کی بات آئی, بہت کچھ تھا مانگنے کو, کون سی چیز مانگوں اور کون سی نہ مانگوں, لیکن سب سے قیمتی چیز زبان پہ آ گئی, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ؟ آسان ترین نہیں, کامیابیوں والا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیے. اتنا بھی کافی تھا, لیکن غم لگا ہوا ہے نا کہ ہدایت کہیں ہاتھ سے چھن نہ جائے, تو مزید ویریفیکیشن کے لیے کہہ دیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ بھٹکے ہوؤں کا. آپ نے دیکھا کہ سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ اور بندے کا ایک مکالمہ ہے. ہمارے سامنے تو یہ سات آیتوں کی صورت میں ہے نا, لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ دیا. آپ اور میں یہاں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, بندہ کہتا ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. بندہ کہتا ہے رب العالمین, اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی اس تعریف پہ خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. آپ قرآن پاک کی روشنی میں جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا اور ان کو پیدا کرنا اور زمین پہ بھیجنا, تو فرشتوں نے وہاں ہلکا سا ایک شبہ ظاہر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ انسان کو کیوں بناتے ہیں جبکہ ہم جو موجود ہیں, نحن نقدس بحمدک ونقدس لک, ہم تیری تعریف کرتے ہیں, تیری تقدیس کرتے ہیں, انسان کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے حکمت معلوم کرنی چاہی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جب ایک انسان دنیا میں اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق قائم کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے, سارے شکر اللہ کے لیے, حمد کا لفظ عربی زبان میں شکر اور تعریف دونوں کے لیے آتا ہے, آل پریزز فار اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آل تھینکس اللہ تعالیٰ کے لیے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ, آپ کہہ کر دیکھیں آپ کیسے فیل ہوگا, جیسے اندر سے آپ کا دل ہلتا ہے. زندگی کا سب سے خوبصورت طرز عمل کیا ہے؟ شکر والی زندگی بسر کیجیے. جب انسان کہتے ہیں نا الحمدللہ, ऐसे लगता है कितनी मंजिलें तय करके इंसान अल्लाह के बहुत करीब चला गया। जो लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते ना, वो कभी खुश नहीं रहते। अल्लाह का शुक्र करने से ही खुशी का आगाज होता है। सच्ची खुशियां सिर्फ उस बंदे के नसीब में है जो अल्लाह की तारीफें करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आप और मैं सोचें कि किस बात पे शुक्र अदा करना है। आप कहते हैं, अच्छा जी किस पे शुक्र करूं, दिया ही क्या, नाउज़ु बिल्ला। बास लोग नेमत उस चीज को कहते हैं जो मिली नहीं, या नेमत वो है जो दूसरों को तो मिली है मुझे नहीं मिली। हालांकि आप देखिए कि इंसान कहे कि अल्लाह तेरा लाख शुक्र किस पे जो तूने दिया, और उस पे तेरा करोड़ शुक्र जो तूने नहीं दिया, और उस पे सद हा करोड़ शुक्र जो दे के वापस ले लिया। यही है ना, या कुछ है मेरे पास या कुछ नहीं मिला, मांगते रहे सारी जिंदगी नहीं मिला, या तीसरी सूरत यह है कि दिया अल्लाह ने फिर छीन लिया। ये तीन ही गम है ना। हम दिए पे भी शुक्र, ना दिए पे भी शुक्र, जो दे के ले लिया उस पे भी शुक्र, गम पे शुक्र, खुशी पे शुक्र, सेहत पे शुक्र, बीमारी पे शुक्र, तन्हाई की रातों में शुक्र, महफिलों में जो वक्त गुजारा उस पे शुक्र। क्या मेरी और आपकी औकात थी कि अल्लाह मैं कुछ देता? पहले तो खुद से पूछते हैं, क्या मेरी ये औकात थी कि मैं पैदा की जाती, मैं इंसान होती? किसी नाली में रिंगता हुआ कीड़ा भी तो हो सकते थे, हम भी कोई केंचुआ होते, कोई सांप होते, कोई मेंढक होते, कीचड़ में लतपत कोई ऐसा जानवर कि जो मिट्टी में है और कभी पानी में है। किसने आप में से, मेरे में से, अल्लाह ताला से ये डील की थी कि अल्लाह ताला मुझे इंसान बनाना? अभी हम ईमान पे और इस्लाम पे तो आई नहीं, सिर्फ लफ्ज इंसान, अल्लाह ने मुझे पैदा किया। जब एक इंसान दुनिया में आके अकड़ता है ना, तो असल में अपनी औकात को भूल जाता है। जब लोग ये कहते हैं ना, पता नहीं मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है, अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा कीजिए, आपने अल्लाह का नहीं बिगाड़ा, आप अपना बिगाड़ रहे हैं ये कहकर। क्योंकि अल्लाह ने तो आपको वो कुछ दिया जो आप सोच भी नहीं सकते थे। अभी एक दो दिन पहले किसी ने एक पिक्चर भेजी और उसका मैसेज क्या था, यानी ऊपर आयत लिखी हुई थी कि या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे रब के बारे में किसने धोखे में डाल दिया। तो डॉक्टर का हाथ है जिसमें ग्लव पहना हुआ है, और बिलीव मी, अब मर्दों के हाथ जरा हमसे बड़े ही होते हैं ना, तो उसकी ये तीन उंगलियों के बीच में इतना सा इंसान का फीटस बच्चा, जो माँ के पेट से अबॉर्ट हो गया वक्त से पहले, तो लिखा हुआ था कि ये वो बच्चा है जिसको दुनिया में आने से पहले रब ने मौत दे दी। मैं और आप किस बात पे अकड़ते हैं? हमारी औकात ही क्या है, एक आंख आगे लग जाती, एक पीछे लग जाती, क्या बड़ी बात थी। हमारा नाक हमारे पेट पे होता तो क्या बड़ी बात थी। आप देखिए, जब माँ के हाथ में बच्चा आता है, कभी उस बच्चे को देखकर माँ से कोई पूछे, सुना ये तूने इसकी आंखें बनाई, ये इसके कान? दुनिया में कितने लोग तस्वीरें बनाते हैं, कोई किससे बनाता है, कोई चौक से बनाता था कभी, कोई रंग से बनाएगा, कोई आज कैमरे से बना लेगा, लेकिन सब कुछ बना के उससे पूछो कि बताओ तुम्हारी तस्वीर बोलती है, सुनती है, देखती है, महसूस करती है? और मुस्कुराता हुआ बच्चा माँ की गोद से अल्लाह ताला उसके हाथों में ले आता है, कैसे? ये अल्लाह की देन है। जब मेरी और आपकी नजर शुक्र वाली होगी ना, तो हमारी जिंदगी में खुशियों का आगाज भी होगा और हमारी जिंदगी में अल्लाह की बंदगी का रंग भी खुल जाएगा। असल जो बात है ना, वो ये है कि हम अपनी औकात को नहीं पहचानते। अल्लाह ने जो दे दिए ये उसका एहसान है। कोई बिजली का बिल जमा ना कराए तो अगले महीने बिजली आती है? पानी ना दे तो क्या हो? जिस दिन से कैलिफोर्निया में आई हूँ, यही जुमला हर रोज सुन रही हूँ कि बारिश नहीं हो रही, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन पिछले 7-8 दिनों में बाय रोड भी बेशुमार ट्रेवल किए, हर दिन 1.5-2 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे दूर भी गए, आज जहाज में भी देख लिया। ऐसे लगता है खुश्क साली, ड्राउट। तो मेरे जहन में सूरत मुल्क की वो आयत आती है, कुल इन्नस बहमा कुम गौरा फमैयाती कुम बीमाई मईन, कह दीजिए कि अगर तुम्हारा रब तुम्हारे पानी को खींच ले तो कौन है जो लेकर आए? सारी तरक्की दुनिया के हाथ में पड़ी रह जाती है। आप ये तो कह सकते हैं कि पानी कम इस्तेमाल करें, आप अपने पौधे खत्म कर दें, हमारी हमारी जो होस्ट थी सेक्रामेंटो में, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें नोटिस आए हैं कि जो आपके घर के बाहर छोटा सा पैच, मेरा ख्याल है कि 10x20 फुट होगा, छोटी सी जो गार्डन होते हैं ना घर के बाहर, तो उसके ऊपर घास काट कर उठवा दीजिए और उसकी जगह वो जो पत्थर की डाल दें, तो हम इसके पैसे आपको देंगे। तो मैंने कहा जब इतने घर वालों को ये ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको इसके पैसे देंगे, पानी क्यों नहीं बरसा लेते, बारिश बरसा लें। और हमने तो आज से 10-15 साल पहले सुना था कि अमेरिका में अब मस्नूई बारिश का इंतजाम कर लिया गया। इंसान बेबस है, इंसान के पास कुछ भी नहीं। फिर आप देखिए कि देखने वाली आंखें, कभी आप अपनी आंखों को देखें, अपने कानों को सुने। इस वक्त आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं सुनने की, सबको बात समझ आ रही है नहीं आ रही ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम आवाज कोशिश तो करते हैं ना। ये कान क्या है आप सोचिए, इन कानों की जगह पे अल्लाह सुभान व तआला ने दो मोटे मोटे गोल बटन लगाए होते। पुराने जमाने के रेडियो को याद करें, ऐसे वो ट्यून इन ट्यून ऑन करके वो मोटे मोटे बटनों से आवाजें लाते देते थे। कैसे हमारा कान है, और आपको हैरत होगी सुनकर कि ये जो कान के अंदर सुराख होते हैं ना, ये और ये हमारी उंगली की पोर बराबर है। जो उसका सुराख की जगह वही उंगली की है। बचपन में वो छोटा है, कान बड़ा होता है तो ये भी बड़ा है। क्यों? कि जब कोई खिलाफ हक बात होगी तो कान में उंगली दे देना, या जलू ना साब या हूं। और आपने एक और चीज नोट की कि आंखें बंद हो सकती हैं, कान बंद नहीं होते। कानों के अंदर उंगलियां दे लो और आंखों के आगे ये पपोटे, कभी आप इस पपोटे को तो देखें कैसे मूव करता है, और आपको पता भी नहीं चला होगा आपने जब से बैठे कितनी दफा बल्कि चपक ली। मैंने एक वाक्य पढ़ा था किसी के बारे में, इंतहाई खूबसूरत कोई शख्स था, तो कोई दूसरा उसको रात जाते गुजरते देखता था तो बहुत उसके दिल में हसद आता था कि ये इतना खूबसूरत क्यों, मैं क्यों नहीं। किस्सा मुख्तसर, एक दिन जब उससे कुर्बत हुई तो उसने क्या बताया, उसने कहा कि मैं अपनी पलकें, ये पलकें नहीं झपक सकता। और किसी ने पूछा कि अगर तुम्हें सिर्फ दुनिया में एक दुआ मांगने की इजाजत दी जाए तो क्या मांगोगे, तो उसने कहा कि मैं उस दुआ को इस काम पे लगा दूंगा कि एक दफा मेरी पलकें खुद ही झपके। कोई बैठा था और उसकी पलकों को बार बार ऐसे कट थोड़ी थोड़ी देर में करता था, और ना करे तो आंखों से पानी के आंसुओं के रतस्वे निकलते थे। यानी जो मुझे आपको मिला हुआ है हमने कभी नहीं सोचा, वो उसके लिए अपनी सारी दुआओं को लगाने को तैयार है कि बस एक दफा मैं खुद से पलके झपकूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी यानी आप देखिए, सारी दुनिया की दौलत आपके पास हो और आप आंखें ना झपक सके, तो आप कहते हैं सारी दौलत ले लो बस आंखें झपकने वाली बना दो। तो हमारी आपकी हजारों लाखों बार एक दिन में झपकी जाती हैं, हमें इसका एहसास ही नहीं होता। तो जब आप कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो असल में आप अल्लाह ताला को एक थैंक यू लेटर देते हैं। ये नमाज में सूरह फातिहा क्यों है, दिन में कम से कम 17 बार, 17 टाइम तो फर्जों में पढ़ते ही है ना, सुन्नत अलग, नफिल अलग, वितर अलग, वैसे भी जब मर्जी पढ़ें, और बंदा है मोमिन तो हर नमाज के बाद, फजर के बाद 33 बार, जोहर के बाद, असर, 5 नमाजों के बाद 30-33 टाइम देखिए, फिर रात को सोते वक्त 33 टाइम देखे। एक ईमान वाले की तो डिक्शनरी में 500 बार दिन में कम अज कम एक लफ्ज आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने दिल की गहराई से कही अल्हम्दुलिल्लाह, तूने इंसान बनाया, तूने मुसलमान बनाया। चलिए जरा इस पे भी बात करते हैं। मेरा नहीं ख्याल हम में से कोई एक भी ऐसी खुशकिस्मत बहन इधर हो कि जिसने अपने शौहर से इस्लाम कबूल किया, जिसने वाकई कोई चीज ऐसी भुगती हो, अगर कोई है तो मुबारक के लायक है वो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो किसी और शरीयत से था फिर इस्लाम पे आ गए तो उसको दुगना अजर है। क्या मैंने और आपने इस इस्लाम के लिए मारें खाई, थप्पड़ खाए, चोटें खाई? क्या मेरे और आपके ईमान में आज इतनी गर्मी है कि बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह तपती रेत पे लटा दिए जाते फिर भी जुबान पे ही की लफ्जा ताहद अहद अहद नहीं है? हम तो उससे बहुत पहले खिसक जाते हैं। कभी कोई कहता है ना कि आजकल मुसलमानों पे हालात बड़े तंग हैं, बड़ी सख्ती है, तो मेरा दिल करता है मैं ऊंची आवाज से कहकहा लगाऊं। मैं कहती हूँ ये कैसी कर्टसी का दौर है, आज तो रिलीजियस फ्रीडम है, आजादी है, आप जो मर्जी करें, आपको कोई कुछ शरण नहीं कह सकता, कानूनन कोई आपको रोक नहीं सकता, आप कहने इट्स माय रिलीजियस राइट को बोल नहीं सकता। कभी आपने सुना किसी को इस्लाम की वजह से मारे पड़े? है एक्सेप्शनल केसेस। अभी चंद दिन पहले किसी ने एक किस्सा भेजा ऑडियो की शक्ल में, भी मेरे फोन में, तो उसका टॉपिक ही कुछ ऐसा था कि एक इस्लाम कबूल करने का दिल खराश वाक्या। और किसी ने आप में से सुना हो तो शायद याद हो, 20-22 मिनट की शायद वो ऑडियो थी, जिसमें एक शख्स खुद सुनाता है कि मैं दुनिया का बदनसीब तरीन और खुशकिस्मत तरीन शख्स हूँ। बदनसीब इसलिए कि मैं इस्लाम से पहले एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता था और मैं किसी डाकुओं के गिरोह के अंदर जाके डालता था, यानी करप्ट शख्स था। और इस्लाम से और मुसलमानों से इतनी नफरत थी कि 22-23 मुसलमान एक दिन में मार के हम आ जाते थे, हमें कुछ नहीं होता था, इंतहाई नफरत थी। लंबी चौड़ी कहानी सुनाता, लेकिन कैसे फिर उसी के भाई की एक बेटी जो थी वो किसी तरह से मुसलमानों के पास पहुंची, फिर उसने इस्लाम कबूल किया। जब वो मुसलमान हुई, वापस इनके पास लाई गई, तो फिर इस शख्स ने खुद, जो उस लड़की का चचा था और उसका बाप यानी जो इसका बड़ा भाई था, इन दोनों ने मिलकर उस बच्ची को जिंदा जलाया। और वो रोते हुए उस वक्त जब उसको पता था कि ये मुझे अब मारने ले जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ कि फलां जगह शहर पे जा रहे हैं, नहाई धोई खुशबू लगाई और ऐसे थी जैसे दुल्हन थी और जा गई, और जब उस पर तेल डाला, और खुद कहता है कि साबुल बुरूज का किस्सा अगर आप कुरान में सुने तो मैं बदनसीब उससे भी बड़ा जालिम हूँ कि मैंने खुद अपनी भतीजी को तेल डालकर जलाया। मेरा भाई तो दूर खड़ा रोता रहा, लेकिन मैं अपनी भतीजी के ऊपर तेल डालता रहा। और आखिर उस लड़की की यही आवाज़ें थी, अल्लाह तू देख रहे ना, अल्लाह तू मुझसे खुश है ना, अल्लाह तुझे मुझ पे प्यार आ रहा है। लेकिन कहते मेरा दिल इतना बंद कर दिया हुआ था शैतान ने कि मुझे उस पे कोई रहम नहीं आया। और उसके बाद घर गए तो मेरा भाई जो था वो बीमार हो गया। जब बीमार हुआ, किसी तरीके से अल्लाह ताला ने उसको किसी और मुसलमान से मिलाया, फिर मेरा भाई भी मुसलमान हो गया। उससे पहले उस लड़की की माँ भी मरी, और लड़की ने कहा कि मेरी माँ मेरे कान में कलमा पढ़ के मरी थी, वो मुसलमान है। यानी लंबी कहानी है सुनने की। फिर आखिर उसी लड़की की जो मौत थी वो इस शख्स के भी इस्लाम का जरिया बनी। तो ये तो एक्सेप्शनल केसेस कहीं ना कहीं के। आप और मैं सुबह से अब तक क्या खा के बैठे हैं? क्या हम सब सुबह से लेके अब तक जो खाया है उसको गिन सकते हैं? कितना सांस लिया हमने, कितनी ऑक्सीजन ली है? आप कहते हैं खाने का नाम रोटी सालन चावल और ये मादी चीजें हैं, ऑक्सीजन कितनी खाई है? ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप देखिए कि जैसे आपकी चाय कड़वी होती है ना, आप एक चम्मच चीनी डाल देते हैं तो क्या हो जाती है? चाय मीठी हो जाती है ना। जिस तरह कड़वी चाय को चीनी मीठा कर देती है ना, शुक्र इस जिंदगी को मीठा कर देता है। जो लोग आपको दुखी दिखते हैं, मान लीजिए शुक्र की कमी है। मैं नहीं मान सकती कि दुनिया में अल्लाह ने किसी के साथ ज्यादती की हो। कुछ लोग हैं सारी जिंदगी आप उनको देखें तो आप कहते हैं ये दुखी दुखे, इनके हालात भी कभी बदलने के नहीं? नहीं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, आपके भी घरों में ऐसे बहुत सारे होंगे, खानदानों में, सारी जिंदगी दुखों में, तकलीफों में, आजमाइशों में, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो शुक्र के पॉजिटिव एटीट्यूड है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों को कसरत से जलते देखा। कहा क्यों अल्लाह के नबी, के अल्लाह का कुफर किया? कहा नहीं, ये शोहरों की ना शुक्री करती हैं। मुराद क्या था? कि जो ना शुक्रा होगा ना, वो इंसानों की भी कदर नहीं करेगा। तो आज के बाद जब अब अगली नमाज में हम पढ़ेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़हन में एक लंबी सी लिस्ट बना लीजिएगा, किस किस बात कर करूं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक कॉल याद आ रहा है कि अल्लाह तेरी नेमतों पे शुक्र करना ये भी तो एक नेमत है, बता इसका हक कैसे अदा करूं। और दुआ भी है ना हज़रत सुलेमान की कि रब्बी औज़ेनी अनशकुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा वो शुक्र अदा करूं जो तूने मेरे और मेरे माँ बाप पे रखा। तो जिंदगी में खुश रहने का राज अल्लाह की तारीफ, सारी तारीफ है। फिर आप देखिए रब्बिल आलमीन कहकर बंदा आप कंधों से बोझ उतारता है कि मैं अपने रब की जिम्मेदारी हूं, मुझे यकीन है मेरा रब मुझे भूखा नहीं मारेगा, एक कीड़े को भी वो दरख्त की तह में छुपे हुए को भी रिस्क देके सुलाता है ना। आप देखिए पानी के अंदर या कहीं कोई देखे तो उसको रिस्क मिलता है ना, तो क्या मेरा रब मुझे नहीं देगा? जब सारे जहान को वो पाल रहा है तो क्या फिर वो मुझे नहीं पालेगा? मुझे किस बात की फिक्र? अक्सर आप देखिए कि हमारे कल्चर के लोगों के जहनों में तफक्कुर आता है, हाय बेटियां बड़ी हो रही हैं, इनके रिश्ते कहाँ से आएंगे। हाय बच्चा बड़ा हो रहा है, इसकी जॉब कहाँ से आएगी। सुना मैं अपने तफक्कुरात में जीते हैं। हाय इस महीने का बिल कहाँ से आएगा। हाय पानी बिजली खाना, हाय पता नहीं आगे जाके क्या होगा। हाय मेरे शौहर दूसरी शादी ना कर लें। हाय मेरी सास मेरे मियाँ को मेरे खिलाफ ना कर दे। आप देखिए अनहोनी बातों का खौफ, और एकदम आप कहिए रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का रब जब वो है तो मुझे क्या फिक्र है। एक शख्स था तो उसने सोचा कि अल्लाह पता नहीं तो अगले साल मुझे कितना को रिस्क देगा, हाय मेरा रिस्क खत्म ना हो जाए। ऐसे जैसे ख्याल आता है ना, उसके बाद कहते हैं कि वो कहीं गया तो कुल्हाड़ा लेकर लकड़ियां काटने लगा। तो उसने किसी दरख्त को जब काटा ना, तो उसके अंदर तह में देखा कि एक छोटा सा पौधा है, पत्ता है, और उस पत्ते को एक कीड़ा खा रहा है। कीड़े के मुंह में पत्ता है। कहने लगा है रब, इस दरख्त की तह में अगर तू इस कीड़े को रिस्क दे सकता है तो तू मुझे भी रिस्क दे सकता है। रब्बिल आलमीन, अल्लाह की कसम नहीं खाना चाहती, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं और आप हर गम से बेनियाज हो जाएं अगर हम नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को समझ के पढ़ें। फिर हम ये ना कहें कि अच्छा अब रिस्क की तलाश में दियारे गैर चलते हैं, अच्छा अब इकोनॉमी डूब गई तो क्या होगा, हाय मियाँ की जॉब चली गई तो खाएंगे कहाँ से, कारोबार डूब रहे तो करेंगे क्या। मेरा आपका ये काम नहीं है। कभी आपके छोटे छोटे बच्चे ये बातें करने लग जाएं, अम्मी इस महीने बिजली का बिल कौन देगा, अम्मी ग्रोसरी कहाँ से आती है, तो आप क्या कहेंगे, बेटा तुम क्यों पूछ रहे हो, ये तुम्हारा काम है ना अम्मी अबू करने। तो जब अम्मी अब्बू के होते हुए एक बच्चा ये सोचना रखे, तो 70 माँ से ज्यादा प्यार करने वाली जात के होते हुए मैं और आप क्यों ये सोचें। मुझे और आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में इस गम में तो नहीं भेजा था। अल्लाह ने हमें कहा था कि तुम काम करो। सूरत मुल्क की पहली आयत, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बड़ी बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में जमीन व आसमान की बादशाहत है, जिसने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि तुमको आजमाए कि तुम में से कौन अहसन अमल करता है। मैं और आप इस दुनिया में एक कमरे इम्तिहान में। अब आप अपने बच्चों का सोचिए, अपना भी याद होगा, मुझे भी याद है, आज भी याद है, जब हमारे इम्तिहान होते हैं ना, या बच्चों के इम्तिहान हो, तो माएँ क्या कहती हैं, चलो बेटा तुम पढ़ो मैं तुम्हारे काम कर दूंगी। माएँ ट्रे लगाकर खाना तक अंदर बेडरूम में देती हैं कि इसने सुबह बगैर नाश्ते के चले जाना है, मैं इसको चाय पानी बनाकर दे ताकि ये भूखी ना जाए। स्त्री भी वो कर देंगी, है ना, क्योंकि इम्तिहान का दिन है ना बच्ची का। आगे पीछे बच्चियां जितना मर्जी काम करें, माएं कहती हैं करो, लेकिन तुम्हारे इम्तिहान हो रहे हैं ना, अब तुम काम ना करना। अल्लाह ने इससे भी 70 गुना ज्यादा प्यार का इजहार किया, ये दुनिया तुम्हारा इम्तिहान है, मैं और आप इस दुनिया में इम्तिहान में, और अल्लाह ताला चाहते हैं कि इम्तिहान के दिनों में तुम अपने खाने पीने की फिक्र ना करो, मैं करूंगा, तुम मेरे करो मैं तुम्हारे करूंगा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का बन जाता है ना, अल्लाह उसका बन जाता है। और आप इमेजिन कीजिए कि जब हमें जिंदगी का ये मकसद समझ आता है ना कि हम इधर क्यों आए हैं, तो सारे काम ही आसान है। मिसाल देती हूँ कि आप सिस्टर्स यहाँ आ जाएं, आपको पता था ना कि आप अल्लाह के घर आ रही हैं, आप दर्स सुनेंगे, आप जहन बनाकर आए थे कि चले आज जाते हैं, कोई बात सुनकर आते हैं। आपके घर से निकलने से पहले से लेके यहां बैठने तक हर चीज आपकी इसी सोच के तहत थी कि आप अल्लाह का कलाम सुनने जा रही हैं। अब मिसाल देती हूं कि अगर आप कल रात किसी शादी में जाने वाली हो और आपको पता है कि मैंने जाना है, तो क्या आपकी सोच यही होगी यहां आते हुए थी, फर्क होगी ना, शादी में जाएंगे क्या पहनेंगे क्या खाएंगे, दुल्हन होगी कपड़े होंगे, जो एक तसव्वुर आता है ना किसी पार्टी का किसी फन का, वो आता है। बस इसको जहन में रख लीजिए, मोमिन को ये सारी जिंदगी यकीन रहता है कि ये दुनिया फन प्लेक्स नहीं है, ये दुनिया पार्टी प्लेक्स नहीं है, ये दुनिया कमरा इम्तिहान है। ये सोच ये माइंडसेट सीधा होता है ना, जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। आप सोचते हैं कि हम दुनिया में खेलने कूदने नहीं आए, हम दुनिया में मौज मस्ती करने नहीं आए, हम इम्तिहान देने आए हैं। काफिर क्या सोचता है कि मैं इस दुनिया में खेलने कूदने आया हूं। मौज मस्ती के लिए आया हूं, बस यही थोड़ा सा फर्क है। लेकिन अफसोस होता है उस वक्त जब मुसलमान भी उसी सोच पे आ जाता है जिस पे काफिर है। अल्लाह ताला सूरह स्वात में कहता है ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीन कफरू, ये काफिरों का गुमान है क्या कि हमने इस दुनिया को खेल तमाशे के लिए बनाया। अफहसिब तो मन्नमा खलकनाकुम अबसा वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये गुमान किए कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किए, और क्या तुम आजमाए ना जाओगे और क्या तुम वापस ना पलटोगे। तो लिहाजा सूरत फातिहा पढ़ते और सुनते वक्त दिल में ये ख्याल रखिए कि अल्लाह ने मुझे एक मकसद के साथ पैदा किया और उसकी शान क्या है, अर रहमान अर रहीम, सबसे ज्यादा रहम करने वाला और सबसे ज्यादा रहीम। देखिए लफ्ज है रहमान और रहीम, उर्दू में है ना, अल हटा दें तो उर्दू के लफ्ज हैं, और इसी से मिलते हुए जरा आप उर्दू के चंद लफ्ज बोलिए। रहम, मां का रहम क्या होता है, यूट्रस, मदर वूम के साथ अल्लाह ने रहमान और रहीम को मिला दिया। जो मां की अपने बच्चे के लिए मोहब्बत होती है ना, अल्लाह ने उसको रहमान और रहीम से रखा। और यहां तो रहमान है, कोई आप में से बता सकता है कि अर रहमान का सबसे खूबसूरत तारुफ क्या है, उसने खुद कराया। जी बोलिए, अभी आप कुछ बोल रहे हैं इधर से। सूरत अर रहमान में क्या पहला जुमला है, अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान का रहम इस दुनिया में क्या है कि उसने कुरान सिखाया। दुनिया में सबसे ज्यादा रहम उस पर हुआ जिसको अल्लाह ने कुरान सिखा दिया, क्योंकि अल्लाह ने खुद का, और कुरान को सिखाने वाला सबसे पहला अल्लाह है। अर रहमान अल्लमल कुरान, फिर उसके बाद बोलना सुनना सिखाया, और ये मैं और आप अल्लाह के रहम की वजह से जी रहे हैं। अगर अल्लाह के रहम का हाल गुनाहगारों को पता चल जाए तो फरमाए वो भी जन्नत की उम्र लगा ले। कतबाला नफ्सिहि रहमा, उसने तो अपने ऊपर लिख लिया है कि मैं तुम्हें माफ करूंगा। सूरत अलनाम में आता है कतबाला नफ्सिहि रहमा, डोंट वरी, मैंने अपने ऊपर रहमत लिखी हुई है। अल्लाह की शान रहम की है, उसकी बहुत सारी सिफात है। 99 नेम्स आप पढ़ते सुनते हैं, कहीं अलवदूद अलकहार अलजब्बार भी है, लेकिन सारी सिफात पे जो सिफत है ना वो अर्रहमान की है, उसका रहम हम पे है। तो लिहाजा अल्लाह की रहमत को पाने का तरीका क्या है, किस पे अल्लाह की रहमत आती है। सूरत अलआराफ में अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि अन करीब मैं अपनी रहमत उन लोगों पे लिख दूंगा जो नमाजों को कायम करते, जकात देते और अल्लाह के बाकी अहकामात को माने। चलिए अब जब अल्लाह ताला रहमान है रहीम है, तो फिर मैं क्या बनूं, मुझे क्या करना है, मेरे भी दिल में रहम होना चाहिए। मैं किसी के साथ कैसे रहम करूं, हमारे दिल में बचपन में पड़ी हुई वो कहानियां याद आ जाती हैं, रहम दिल बादशाह, किसी को देखा उस पर रहम आ गया। लेकिन मैं अक्सर अपने दिल से ये पूछती हूँ, हम मुसलमान जिसको आज उम्मत मुस्लिमा कहते हैं, अल्लाह ने हमें वो दीन हाथ में दे दिया, बगैर कुर्बानियों के अल्लाह ने हमें मुसलमान बना दिया, क्या मेरा और आपका दिल इंसानियत के लिए नहीं तड़पता। आप सोचिए अगर हम किसी गैर मुस्लिम घर में पैदा होते और हमारे नेबर में कोई मुस्लिम रहता और वो हमसे इतना खूबसूरत दीनी शेयर ना करता, तो क्या कल क्यामत के दिन हम उसको माफ करते। मुझे और आपको इंसानियत पे अगर रहम करना है ना, तो ये खूबसूरत दीन जाके उन तक पहुंचाना है। मुझे और आपको अल्लाह ने इसी काम के लिए दुनिया में भेजा था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन गिरोह हो जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की खैर के लिए भेजा गया। हम में से बहुत सारे लोग हैं उनको सोशल वर्क का बहुत शौक होता है, शादियां करवाते हैं लोगों की मदद करते हैं, उनको ऑफिसेज में लेकर जाते हैं, हर तरह से मुमकिन है। आज भी अल्लाह ना करे किसी दुनिया के मुल्क में जलजला आए तो लोग पैसा जमा करते, कपड़े जमा करते, फिर वहां भेजते हैं, ये सारे खैर के काम है। लेकिन आपको पता है कि सबसे बड़ा सोशल वर्क क्या है, कोई आप में से बताए, मुझे अच्छा लगेगा। जी सबसे बड़ा मसला क्या है कि लोगों की आखिरत की फिक्र करें। कभी आपने देखा कि आप बाहर गए, बस में बैठे, जहाज में गए और आपके इर्द गिर्द लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और आपकी आंखों से आंसू निकल आए। अल्लाह इनको पता ही नहीं है कि जिस बेकसी की जिंदगी ये गुजार रहे हैं इसका अंजाम क्या है। इनको होश नहीं है कि ये कल क्या होगा। मुझे और आपको अपने दिल में लोगों की तड़प पैदा करनी है। एक मौके पे नबी सल्लम बैठे थे, सहाबे कराम भी आपके साथ थे, तो कैदियों में एक औरत आई तो उसका बच्चा गुम गया, छोटा गोद का बच्चा था, माँ की गोद से निकल कर कहीं गया। अब वो माँ बावलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढ रही है। आप तसव्वुर में लाएं कैसी लग रही होगी। जो किसी का बच्चा मिलता है ना, उसको पकड़ती है, दूध पिलाने लग जाती है, बच्चा किधर है, बच्चा किधर है। इतने में उसने देखा कि उसका बच्चा दूर धूप में खड़ा है और उसके पाँव जल रहे हैं, तो रो रहा है। और वो माँ यहाँ से जाकर उस बच्चे को पकड़ती है और उसको सीने से लगाती है, और क्या चूमती है, उसका माथा, सर नहीं, उसके पाँव के तलवे चूमती है कि मेरे बच्चे तेरे पाँव जल गए। अल्लाह के नबी ये मंजर देख रहे थे, आपकी आंखें नम थी। आपने कहा सहाबा कराम से ये बताओ कि अगर कोई तुमसे कहे कि ये माँ खुद अपने बच्चे को किसी आग के तंदूर में फेंक दे तो तुम मानोगे। अल्लाह के नबी कभी नहीं मानेंगे। अभी तो हमने देखा ये इसके तलवों को बर्दाश्त नहीं कर सकी जलता, ये कहाँ उसको जलता देखेगी। तो आपने फरमाया जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, औ कमा काला, अल्लाह को अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार है, फिर वो अपने बंदों को आग में कैसे डालेगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, क्या करेगा लोगो अल्लाह अजाब देकर तुमको। अल्लाह ने मुझे और आपको और इंसानों को आग के लिए नहीं पैदा किया। इन शकर तुम वा मन तुम, शुक्र कर लो और ईमान ले आओ। वो कान अल्लाह शाकिरन अलीमा, वो कदरदान है, वो शुक्र गुजार है। तो लिहाजा मुझे और आपको लोगों के लिए रहमत बनना है। हमारे प्यारे नबी का लकब क्या था, रहमतुल्लिल आलमीन। अल्लाह कौन है, अर रहमान अर रहीम। नबी कौन है, रहमतुल्लिल आलमीन। तो उम्मत को कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम इस जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। लेकिन याद रखिए कि किसी के लिए दिल कब पसीजेगा, जब हम सच्ची मोहब्बत पैदा करेंगे अपने दिलों में। आपका पेट भरा हो और आपको यकीन हो कि आपके घर में तो अगले एक महीने का भी खाना है, लेकिन सिर्फ आपके साथ वाली दीवार में जो बच्चे हैं मां के, वो भूख से रो रो के सो गए, सच बताइए क्या आपको अपने उस खाए की खुशी होगी। गले से नहीं उतरेगा। मैं कहती इसको भी छोड़ दीजिए, आप यहाँ बेहतरीन खाना खाएं और आपको अपना कोई भाई बहन या खाला फूफी पाकिस्तान की याद आ जाए कि जिनके घर में हो सकता है फाके हों, तो यहाँ बैठे आपके गले से नहीं उतरेगा कि हाय मेरा भाई इतना भूखा होगा, उसके बच्चों के पास कुछ नहीं और मैं इतना अच्छा खा पी रही हूँ। बस इस दर्द को पैदा कीजिए अपने अंदर, किस लिए, गैरों के लिए। जिस दिन हम उम्मते मुस्लिमा ने लोगों के लिए तड़पना शुरू कर दिया, इंसानियत का नसीब बदल जाएगा। ये अल्लाह के नबी की तड़प थी जिसने आपको बेचैन रखा। कभी आप सोचें कि नबी सल्लम कितने सुख चैन की जिंदगी बसर कर रहे थे। अब मैं आपको सीरत में ले नहीं जाना चाहती, वरना तो फिर हम इधर आ ही नहीं सकेंगे, इतने दिलगुदाज पहलू हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल नबी सल्लम के हाल पे गौर कीजिए, जब 40 साल की उम्र मुबारक हुई, आपको वही मिली, नबूवत मिली, आप क्या थे, मक्का के कामयाब ताजिर थे। मक्का की अमीर तरीन औरत हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से आपकी शादी हो चुकी थी, आपके बच्चे थे, कितनी पुरसकून जिंदगी होगी आपकी। आप आज की जुबान में कहें, सिर्फ टर्म्स इस्तेमाल करती हूँ, नबी के लिए तो दिल भी नहीं करता ऐसे सोचें, लेकिन आप कह लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहर के बेस्ट, बोलिए क्या थे, ताजिर थे, बिजनेसमैन थे। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे, इधर से माल लेकर उधर भेजते, शाम शाम से माल लेकर इधर आते। कितना सुकून था, कितना आसान होता अगर अल्लाह के नबी इसी तरह से जिंदगी बसर करते। लेकिन जिस दिन इकरा बिस्मी रब्बी कल लजी खलक की आयतें उतरी, उसके बाद देखिए अल्लाह के नबी के दिल की जो कैफियत थी। और जब कौम फानजिर सूरत मुद्दसर की आयतें उतर गई, खड़े होइए और लोगों को वॉर्न कीजिए, उसके बाद वो अल्लाह का बंदा ऐसा खड़ा हुआ कि बिस्तर मर्ग तक लोगों को दीन की बातें बताते गए कि असलात वमा मलकत ईमानों को, लोगों नमाज का ख्याल रखो और अपने लौंडी गुलामों का, अपनी बीवियों का ख्याल रखो। कितनी मुश्किल जिंदगी गुजरी आपकी। आप सीरत पढ़ते हैं तो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। आज हम मुसलमानों में इसका तसव्वुर भी नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि और क्या करें, नमाज तो पढ़ ली। अभी आज 24 दिन गुजर गए, माशाल्लाह हमने 29 रोजे भी रखे, बड़े लंबे रखे, गर्मी के रखे। ये अलग बात है कि हर रोज ठंडे तरबूज से खोले और हर रोज बिरयानी पुलाव चावल खाने खाए। आपके शहर का मुझे नहीं पता, लेकिन जिस शहर में मैं थी, अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में इफ्तारी थी शाम को, और एवरेज 300 से 400 लोगों की इफ्तारी उन्होंने बताया कि हर मस्जिद में आती है। मैंने नहीं किसी एक दिन की इफ्तारी में ये देखा कि चलो कोई उबले हुए चावल और साथ खाली दाल दे के उन्होंने आपको तरखा दिया। अगर कभी दाल होगी तो साथ उसके चिकन रोस्ट जरूर होगा, या पता नहीं क्या बुलाई होंगी। शादियों के खाने जो हम कभी शादी में खाते थे, जिसका फुल मील कहते हैं, 7-5 डिशेस का, अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में रमजान में कमोबेश वही सर्व हुआ है। 1200 1500 से लेकर $2000 तक एक इफ्तारी में एक दिन का खाना बना। ये अब सारी बातें हम पीछे बहुत कर चुके हैं अपने इफ्तारी के दरसों में भी, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है इस वक्त, जो खुद से भी है। अगर जन्नत इतनी आसान होती, इतने लंबे लंबे रोजे रख कर जन्नत मिल जाती, तो अल्लाह के नबी अपने सहाबा को गर्मियों की दोपहर में रोजा रखवाकर बदर तक क्यों लेकर जाते, और अल्लाह के नबी रमजान के दिनों में हिजरतें क्यों करते, और फतेह मक्का का सफर क्यों होता। पॉइंट गौर करने का, अगर हमारी इबादत से अल्लाह ताला खुश हो जाता ना, और अगर दुनिया में इस्लाम को गलबा सिर्फ हमारे मुसलमानों के नमाज रोजे हज जकात से होता, तो फिर कभी भी वल्लाही बदर के मैदान में मुंह के रोजे के साथ ना जाते लोग। हमारा दीन प्रैक्टिकल दीन है, ये इबादत हमें इस काबिल करती है कि हम अल्लाह के रास्ते में भाग दौड़ करें। और याद रखिए, इसका नुक्ता आगाज तबलीग से होता है, इबलाग बल्लिगु अन्नी वलव आया। और तबलीग से पहले क्या चाहिए, तालीम। आप और मैं जिस दिन इस कुरान को अपनी जिंदगी में खोलते हैं ना, तो हमारी जिंदगी का एक बाब खुलता है। आप में से जिन सिस्टर्स ने रमजान में दौरे कुरान किया, उन्होंने यकीनन इस दर्द को महसूस किया होगा कि अब हमें इसको इन डेप्थ पढ़ना है। जिस दिन आप इस कुरान को अपने सीने में डाल लेते हैं ना, बस उसके बाद वो कहते हैं सोने के दिन गए, अब उठो जागो और जगाओ, चैन नहीं पड़ता। कैसे सो सकते हैं जबकि अल्लाह के बंदे अभी प्यासे हैं, अभी वो भूखे हैं। कितनी इंसानियत है। आज जब हम जहाज में थे, तो हम जहाज में कुछ सीट्स खाली थी, तो हमारे साथ भी खाली थी पीछे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की मेरे हस्बैंड यहीं के रेस्ड हैं, इंग्लिश में फ्लुएंट है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब भी ट्रैवल में, आपको पता है कि लोग फारिग होते हैं ज्यादा, तो बातचीत करना इस्लाम पे, ऐसी हल्की हमेशा बात इसी तरह शुरू करते हैं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। तो अमूमन हमारे साथ तीसरा पर्सन जो मर्द होता है, तो मैं शुक्र करती हूँ कि अब ये बोलेंगे तो मैं आराम से बैठूंगी, क्योंकि फिर मैं विंडो की तरफ होती हूँ और बीच में ये होके दूसरी तरफ ये है, और कभी कोई औरत आ जाए तो फिर मुझे बोलना पड़ता है। तो इत्तफाक ये था कि आज हमारे साथ कोई भी नहीं था, फिर अल्लाह का हुक्म इस पर भी था, ऑलमोस्ट 2 आवर्स हमें जहाज में बैठना पड़ा। कोई प्रॉब्लम थी, आपकी तरफ कोई फूकें थी, क्या थी, अल्लाह के हुक्म से फ्लाइट तो 1 घंटा 10-20 मिनट की थी, लेकिन हम उससे पहले जहाज में थे, तो मेरे साथ बैठे हुए, तो मुझे कहते हैं मैं किससे दावत दूं, मैं किससे बातें करूं। मैंने कहा मुझे दावत दें। खैर किस्सा मुख्य, वो जैसे कहते हैं ना, आदत पड़ी हो तो जाती नहीं, तो थोड़ी देर बाद स्ट्रेच के लिए उठे, तो हमारे बिल्कुल पीछे कोई एक शख्स था, मैंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब ये उधर बैठे तो मुझे इनकी आवाज आई, जो हाउ यू डूइंग, वो बड़ा खुश अखलाक था, जो मैं इस वक्त आपसे अपना दर्द शेयर करने लगी हूँ। उसके बाद ये पीछे बैठ गए, पूरा वक्त ये उनसे बातें, इतना स्माइली और इतना वो शख्स, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो अक्सर तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट ले रहा था, और ये उसको बता रहे ऐसे ही पर्पज ऑफ लाइफ, लुक एट द हेवन, लुक एट द स्काई, हू मेक दिस दिस, और साथ हल्की फुल्की बातें, और वो एक्सीलेंट और ऐसे, और वो इतना, तो मैं आगे एक किस्म की रो रही थी। मैंने कहा शायद आज का ये जहाज का ये सफर और ये हमारा थोड़ी जहाज में थोड़ी देर बैठना, अल्लाह इस बंदे को आग से बचा ले, इतना स्माइली है, इतना नहीं, बात में शुक्रिया बोल के गया, आई लाइक योर टॉकिंग, थैंक यू, फिर शुक्रिया अदा कर रहा है और वो देख रहा है, और कैसे यानी उसके कमेंट्स थे। तो मैंने सोचा कि कितने ऐसे लोग हैं जो आग भी तरस रहे हैं, लेकिन हम अपने हाल में रहते हैं, हमारे दिल में तड़प नहीं है। सच्ची बात है, हमारे दिल में रहम नहीं है। हम किसी को भूखा देखते हैं, हम फौरन जेब से पैसे निकाल के कहते हैं जाओ खाना ले लो, हम किसी को सर्दी में ठंड में देखते हैं, हम कहते हैं जाओ मोटे कपड़े ले लो, लेकिन हमें तरस नहीं आता लोगों को कुफर के ऊपर देखकर, जहालत में देखकर। आपकी बात सच है कि पहले मुसलमानों को तो बता लें, नॉन मुस्लिम तक वो पहुंचेगा जिसका अपना दिल तड़प चुका होगा। हम तो आज अपनों से बात नहीं करते। तो अर रहमान अर रहीम, उस रहम वाले के बंदे होने का तकाजा क्या है कि इबादुर रहमान बनो। मेरी और आपकी जिंदगी की ये तस्वीर होनी चाहिए कि हमने अल्लाह के बंदों को बचाना है, और अगर नहीं है ना तो अगली सिफत मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। इमेजिन कीजिए, एक बड़ा सा दरबार लगा है और मैं वहां कटहरे में खड़ी हूं, और सारी जिंदगी की नेमतें जो मेरे रब ने मुझे दी वो उसका हिसाब मांग रहा है। देखिए, जब किसी को मालिक कहते हैं तो हक देते हैं ना कि अब हिसाब भी ले ले। जब हम कहते हैं ना मालिक यौमिद्दीन, असल में हम अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह अब तू मेरे से हिसाब ले। क्या हिसाब दे सकते हैं? आज जिंदगी में जो कुछ उसने हमें दिया है, आज उसका हिसाब खुद को दे ले। जो खा लिया, अच्छे काम कर लिए, उन लुकमों का हिसाब नहीं है। जो पहन लिया और अच्छे काम कर लिए उस दौरान, हिसाब नहीं है। असल हिसाब कब होगा और किस चीज का होगा? खाते भी अच्छा है, नाफरमानियां उतनी। जिस दिन ज्यादा अच्छा पहनते हैं उस दिन ज्यादा नाफरमानियां करते हैं। और मैं तो सबसे ज्यादा खुद को मुजरिम कहती हूं जो हम वेस्ट में रहते हैं। यकीन करें, हम बिगड़ गए। माजरत के साथ, मैं आपकी गेस्ट हूं लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत है, इसलिए कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि हम वेस्ट में रहने वाले नेमतों में इतने पल गए, एक मिनट हम पंखे के बगैर नहीं रहते। एक 19-20 की कुर्सी हमारी टेढ़ी हो जाए, हमारे मिजाज बिगड़ने लगते हैं। हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि हमें ऐसे लगता है कि जो हो दुनिया में बस हमारी मर्जी से हो। और कौन? कई जगह मजबूरियों में लोग होते हैं, उनको झुकना ही पड़ता है। मजबूरी में फंसे हुए, उनको फंसना है, बिजली नहीं है, क्या करें? हमारी तो बिजली भी नहीं जाती। मैं सोच रही थी, जब ये पानी का सोच रही थी तो मैंने कहा अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि फिर इन मुल्कों में भी अब ये सब चेकिंग हो जाए और सारा कुछ बिजली का भी बिल आए और पानी का भी और कनेक्शन हो। और पाकिस्तान में, कराची में आपने देखा है, लोग टैंकरों के हिसाब से पानी खरीदते हैं और लाते हैं, फिर जो मेहमान आता है उसके लिए भी वो कहते हैं कि जरा कम इस्तेमाल कीजिए। जब अल्लाह हमें इस दुनिया में नेमते देता है तो मालिक यौमिद्दीन, आप इसको अपने ऊपर लें। जब आप कहते हैं अल्लाह अकबर, क्याम की हालत में हम पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा, मैं जब हाथ सीने पे बांध के खड़ी करूं अपने आप को तो मुझे ऐसे लगता है कि मुजरिम कटहरे में खड़ा है और एक बड़ी अदालत है और वो मालिक यौमिद्दीन पूछ रहा है बता क्या किया जिंदगी में। तीन सवाल कब्र के जो मालिक यौमिद्दीन ने जरूर पूछने हैं, और पांच सवाल कयामत के दिन के हैं। कब्र के तीन सवाल, मन रब्बू का, रब कौन था? मर रसूलू का, तुम्हारा रसूल कौन था? और मा दीनू का, दीन क्या है? हम कहेंगे तो फर फर बोलेंगे, किसको नहीं पता अल्लाह रसूल और आखिरत और इस्लाम। हदीस में आता है कि जिस शख्स ने दुनिया में अल्लाह को रब मानने का हक अदा ना किया, कब्र में उसकी जुबान से लफ्ज रब नहीं निकलेगा। क्या कहेगा? लादरी लादरी, आई डोंट नो आई डोंट नो। एक रिवायत में आता है कि वहां कहेगा काश मैं दुनिया में कुछ पढ़ता लिखता तो आज तुम्हें इसका जवाब देता। और एक रिवायत में आता है कि इंसान कहेगा जो लोग कहते थे मैं तो वो कह देता था, लेकिन लफ्ज रब उसकी जुबान पे नहीं आएगा। और रसूल का लफ्ज कब आएगा जुबान पे? जब रसूल के मुताबिक जिंदगी बसर की होगी। अल्लाह के रसूल एक उसवे हसना होते हैं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमें नमाज सिखाने आए थे? वो तो एक छोटे से बुकलेट में आती, पूरे कुरान में से आप नमाज के आयतें जमा करें ना तो 2-2.5 सफों का एक बुकलेट बनेगा, दैट्स इट। सबसे लंबी आयत तो कुरान में जो है वो आयते दहन है, कर्ज के मसाइल पे, विरासत के मसाइल देख लीजिए, वसीयत के अहकाम देख लीजिए, तलाक और निकाह के अहकाम देखिए। आज हमारी जिंदगी में रसूल की इताअत कितनी है? और दुख पता क्या हो रहा है कि वक्त के साथ साथ जितना हम अपने आप को मुआशरे से अपडेटेड करते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज जो निकलती जा रही है वो रसूल की इताअत निकलती जा रही है। ہم کہتے ہیں رسول کی سنتیں کیا ہیں؟ فرضوں کے بعد سنتیں، فجر کی دو سنتیں، عصر کی اور ظہر کی، ہم سنت پھر اس پہ پہنچ جائیں گے، سنت موقعہ ہے غیر موقعہ ہے، یعنی ہم نے سنتوں کو نماز سے جوڑ دیا. ہاں مسواک کی سنتیں بھی ہیں، اللہ کے نبی مسواک پکڑتے تھے اور یہ وہ، یعنی ہم نے عملی سنتوں کو صرف عبادات سے جوڑ دیا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ بھی سنت ہی کہ لوگوں کے لیے تڑپو، یہ بھی سنت ہی کہ دشمن تمہارے سامنے ہے تو مقابلہ کر سکتے ہو، لیکن جا کے کہہ دو لا تصریب علیکم الیوم، آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں، جاؤ معاف کر دو. مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تڑپنا بھی سنت تھی، طائف تک جانا، پیدل سفر کرنا، خون پاؤں میں جم گیا، جوتے چپک گئے، یہ بھی سنت تھی. آج ہم مسلمانوں کی زندگی میں خوف انفسکم واہلیکم نارا تو دور کی بات ہے، ہم کہاں ان سنتوں پہ چلتے ہیں کہ اسلام کو پھیلانا بھی تو ایک سنت تھی. تو یہ تو بڑا تلخ موضوع ہے. آج ہم مسلمانوں کو اس چیز کو عمل میں لانا پڑے گا. جس تیزی سے ہمارا لائف سٹائل چینج ہوتا جا رہا ہے نا، ہمارے بچے اگلی ایک دو جنریشن کے بعد شاید یہ بھول ہی جائیں گے کہ نبی کے سنت پہننے اوڑھنے کھانے پینے کے طریقے کیا تھے. اور صحابہ کرام اللہ کے نبی سے اتنی محبت فرماتے تھے، کھاتے نہیں تھے کچھ، کہتے تھے پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی کھاتے کیسے تھے اس کو. حضرت عبداللہ بن عمر ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے، ان کے غلام نافع ان کے ساتھ تھے، تو دور سے بانسری کی آواز آئی. بانسری وہ کیا اس کو بولتے ہیں انگلش میں؟ فلوٹ. تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلی دی اور کہا کہ جب آواز آنی ختم ہو جائے گی نا تو مجھے بتانا. جب کچھ اور آگے گئے، ملازم نے بتا دیا کہ اب نہیں آ رہی، تو کانوں سے انگلیاں نکالی اور کہا کہ واللہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر سے گزرا تھا اور وہاں بانسری کی آواز آئی تھی، تو آپ نے اس وقت بالکل ایسے ہی کیا تھا، تو میں نے آج آپ کی محبت میں ایسے کیا. آج ہم کہتے ہو کریزی، کیا فرق پڑتا ہے. اور میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی کہ ایک افطاری میں کسی بڑے 5-star ہوٹل، مسلم ملک کی بات ہے، کوئی یہاں کی باتیں نہیں ہیں، افطاری کا پروگرام کسی بڑے ہوٹل میں تھا اور مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت ہی ہوتا ہے آف کورس، اور میوزک چل رہا تھا. تو جا کے انہوں نے کہا کہ یہاں افطاری کے لیے لوگ آئے ہیں، میوزک بند کر دو. تو انہوں نے کہا اچھا میوزک تو نہیں بند کر سکتے، یہ تو ہوٹل کے اصول کے خلاف ہے، کیونکہ یہاں ماشاءاللہ گورے اور کالے سارے ہی رہتے ہیں. چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بند کر کے لائیو بانسری بجوا دیتے ہیں. جی تب مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ ایک صحابی کا عمل کیا تھا. دیکھیے ہمارا کیا حال ہے. مجھے ابھی رمضان میں کسی نے پوچھا یہ بتائیں کہ افطاریوں میں یہ جو مکس ڈنر ہوتے ہیں تو کیا پھر ہم اس میں جائیں کہ نہ جائیں. تب مجھے پتا چلا کہ ابھی بھی یہ جو حالت موجود ہے کہ رمضان کی تراویح ثواب کی نیت، ایک منٹ پہلے آپ روزہ کھول لیں نا تو لوگ آپ کے اوپر فتویٰ دائر کر دیں گے، اور آپ ذرا سا قبلہ دیکھتے ہوئے ادھر سے ادھر کر دیں تو چھوڑ دیں گے، لیکن اس میں سنتیں ٹوٹتی دکھتی ہیں. کیا ہو گیا مسلمان آج تجھے؟ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چلی گئی. صرف عبادت برائے عبادت، نماز برائے نماز، روزہ برائے روزہ، حج برائے حج. اگر اس طرح کی ظاہری نیکیوں سے دین پھیل جاتا تو اللہ کے نبی کو بدر سے لے کر تبوک تک اتنا خون جلانے کی کیا ضرورت تھی. اس لیے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، اس کو ذہن میں رکھ کے زندگی بسر کرنی ہے. اور جس انسان نے زندگی سے سوچ سے گزار لی نا کہ میں نے رب کو جواب دینا، یاد رکھے وہ کہتے ہیں نا جو ڈر گیا وہ تر گیا. 29 بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو فم منوت یا کتاب ہوئی یمین ہی فیقول ہا مقرب کتابیا، جس کو اللہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے گا وہ لوگوں کو خوشی خوشی دکھائے گا، لوگوں میرا نام اعمال دیکھو. لوگ پوچھیں گے بھی کیا ہوا، آپ کیا کرتے تھے، کیا نیکیاں کرتے. ایک جملہ، انی ظننت انی ملاق حسابیا، میں نے صرف اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کی تھی کہ مجھے اپنے حساب سے ملاقات کرنی ہے. یہ ہے مالک یوم الدین. سچ بتائیں کیا آج ہم اس سوچ کو اپنی زندگی میں پاتے؟ آتی ہے سوچ لیکن ٹھہرتی نہیں ہے، ورنہ مسلمان رمضان کے بعد اتنی جلدی بدل نہ جائے کہ عید کے دن بھی پہچاننا ممکن نہ رہے. اور قبر کے بعد جو 5 حساب مالک یوم الدین نے قیامت کے دن لینے، آپ میں سے کچھ کو تو شاید میرے سے سن کے زبانی یاد ہو چکے ہوں گے، اتنی دفعہ میں نے یہ حدیث درسوں میں کوٹ کی، لیکن جب بیان کرتی ہوں بالکل نہیں لگتی ہے. آپ کا بھی حق ہے. 5 سوال کون سے ہوں گے قیامت کے دن؟ صرف میں اور آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں. پرچہ آؤٹ ہے، صرف مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے. کون سے سوال ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے. فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عنه خمسہ، قیامت کے دن آدم کا بیٹا اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہلا سکے گا. جیسے کبھی ماں کو بچے پہ بڑا غصہ آتا ہے نا، کہتے ہلنا نہیں، یہاں سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، میری طرف دیکھو، خبردار یہاں سے موو کیے تو. اتنا اللہ غصے میں ہوگا کہ قدم نہیں ہلانے دے گا جب تک حتی یسأل عنہ خمسہ، پانچ سوالوں کے جواب نہ دے. اور پہلا سوال، عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں فنا کی؟ کیا میں اور آپ اگلی نماز کی سورت فاتحہ میں مالک یوم الدین کہتے ہوئے اس کو یاد رکھیں گے؟ اور یہ سوال نیکوں سے بھی ہونا، بدوں سے بھی ہونا، نبیوں سے بھی ہونا اور فاجروں سے بھی ہونا، بتاؤ عمر کہاں گزاری؟ آج ہماری عمریں کہاں گزر رہی ہیں؟ آج ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مجھے سب سے مشکل لگتا ہے اس وقت لوگوں کے سوال کا جواب دینا جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہاں رہتی ہیں. آج بھی پوچھا، ہر دن پوچھتے ہیں لوگ، اچھا آپ کہاں ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کدھر جائیں گی بتا، اچھا آپ کا اپنا گھر کدھر ہے، اچھا آپ کا پرماننٹ گھر کدھر ہے، پرماننٹ آگے بنے گا، پرماننٹ بنا کے بیٹھ گئے تو کیسے موو ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ پھر قدم پکڑ لیے جاتے ہیں. اگر اللہ نے حالات ایسے بنا دیے کہ ہم اگر چار لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ادھر سے ادھر جا کے، تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ مجھے کسی نے کہا جب آپ ادھر ادھر درسوں میں جاتی ہیں کتنے کو لوگ آتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک بھی نہ آئے، یہ مجھے پتا کہ میں چلی گئی، میرا اجر لکھ لیا اللہ نے. اور کسی ایک کو پتہ لگ جائے، کسی ایک کی زندگی بدل جائے، آپ کو مجھے کیا پتا؟ ہم کو گننے آتے ہیں، ہم کوئی لوگوں کو بالشتوں سے ناپیں گے؟ اور کوئی ایک بھی ایمان نہ لے تو لائے تو کیا اجر ضائع ہو گیا؟ پھر تو حضرت نوح کا اجر ضائع ہو گیا. اتنا فکر ہے کہ اپنی عمر جو گزر رہی ہے برف کی طرح، اس کو میلٹ کرنے سے ہونے سے بچانا ہے. ہم روک تو نہیں سکتے. آپ اور میں دیکھیے، آج اس وقت کیا تاریخ ہے؟ 9 اگست 2015. کل اس وقت تک ہم اپنی موت سے 24 گھنٹے دور تھے آج کی نسبت. کھڑی کا ہر گھنٹہ ہمیں ہماری موت کے قریب کر رہا ہے. ان عمری ہی فی ما فنا ہو، کہاں فنا ہو رہی عمر؟ کیا یہ کوئی زندگی ہے ہماری؟ صبح ہوتی ہے، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پھر گھر صاف کرتے ہیں، پھر کھانے بنتے ہیں، پھر صفائیاں ہوتی ہیں، پھر بچوں کو لاتے ہیں، کھاتے پلاتے ہیں، پھر شام ہوتی ہے، پھر ان کی فکر کرے، اور کچھ اسکول کا پڑھ لیا، کچھ سپارا پڑھا دیا، پھر اگلے دن وہی ایک روٹیشن پہ چل رہی ہے زندگی. زندگی پہ بندگی شرمندگی. تو آج میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے سونے سے پہلے کہ میری زندگی کہاں گزر رہی ہے. خود سے تو پوچھیں، میری زندگی سے کیا پھیل رہا ہے؟ اگر میں آج دنیا سے چلی جاؤں، کس کو فرق پڑے گا؟ کتنے لوگ روئیں گے میرے مرنے پہ؟ کتنوں کو صدمہ ہوگا میرے مرنے کا؟ جتنے کو دنیا میں فائدہ دے رہے ہیں نا، کم از کم اتنے لوگ تو ہماری وجہ سے متاثر ہوں گے نا. دو بچوں کو سارا دن پالتے رہتے ہیں، انہی کے نخرے دیکھتے رہتے ہیں. میں کہتی ہوں معذرت کے ساتھ چھوٹے بچوں والی مائیں، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، لیکن جس طرح آج بچوں کو عموماً مسلمان پال رہے ہیں، ایسے پہلے مائیں نہیں پالتی تھیں. آپ میں سے دو چار سے بات میں پوچھ لوں، 10-10 بچے ہوتے تھے موقع، ایسے ہی پل جاتے تھے، کام بھی کرتی رہتی تھی، بچے بھی پل جاتے تھے. آج تو وہ جیسے پودے کو ہر وقت پانی دیتے رہتے ہیں نا، تو وہی گل جاتا ہے. اتنے نخرے، اتنے لاڑ، پھر بچے آپ کا مستقبل سیٹ کرتے ہیں، کدھر جانا ہے، کدھر نہیں جانا ہے، کیا کرنا ہے، پلنے دیجیے، اللہ پال دے گا. لیکن آپ اپنے زندگی کے مقصد کو نہ بھولیں. پھر دوسرا سوال ہوگا، ان شباب ہی فی ما بلا ہو، جوانی کہاں پرانی کی؟ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اچھا جب دین کا کام کرنے لے بوڑھے ہی ہوں گے، یہ جوان بھی دین کا کام کرتے ہیں؟ اچھا ہم نے تو سوچا جب فلاں بڑا ہی بوڑھا سا ہوگا، یہ جوان کیسے نکلا؟ کیوں اللہ کا دین بوڑھوں کا ہے؟ آپ اور میں اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ شوہر جوان، بیٹا جوان، بھائی جوان، خود کیا چاہتے ہیں ہم سب؟ جوانی. آج ایک مارکیٹ میں ایسی کریم آ جائے نا کہ جس پہ دعویٰ ہو کہ اس کو لگانے سے آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، چاہے پک کی چربی ڈلی ہو، چاہے وہ $100 کے $1000 کی ہو، ہم بورو کر کے لے لیں گے، ہم نے بوڑھے نہیں ہونا. اور آپ کو تھا کہ یہ تھی وہ خواہش جس کے راستے آدم اور حوا کو بہکایا تھا ابلیس نے، کہ تمہیں پتا ہے ایسی دوا دے دوں کہ اس کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے اور تم زندہ رہو گے. تو جوانی رب کو دے دے. آپ کا رب آپ سے آپ کی جوانی مانگتا ہے. کیوں مانگتا ہے؟ تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے جوان کر دے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے سے پہلے سب کو جوان کر دینا. ایک بڑھیا آئی اللہ کے نبی کے پاس, کہا اللہ کے نبی میں جنت میں جاؤں گی؟ کہا نہیں, بوڑھے نہیں جائیں گے, بوڑھے نہیں ہوں گے. رونے لگ گئی. کہا اللہ کی بندی تو جوان ہو کے جائے گی. کتنی بڑی بات ہے. آج ہم اپنی اور اپنے بچوں کی جوانیوں کو بھی دیکھیں. آج ہمارے جوانوں کی تو ایک نئی دنیا ہے, اپنی دنیا ہے. ہم 4, 6, 10 لوگ مل جائیں, بس ہم کہتے ہیں اب یہ بچوں کے کام تھے. وہ مصروف پڑے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں نا, وہ جابس کرتے ہیں نا. اچھا ویک ڈیز میں وہ پڑھتے ہیں, اچھا ویکینڈ میں آ جائیں وہ جاب کرتے ہیں, شام کو وہ جم جاتے ہیں, رات کو وہ آ جائیں پھر اسی کلاس میں آ جائیں. کہتے نہیں, اس وقت ان کے گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں, پارٹی. ایک دو سٹریمز چل رہی ہیں, ایک طرف زندگی کے اندر ماں باپ کی اور ایک طرف بچوں کی. اللہ ماشاءاللہ جنہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, لیکن اس جوانی کو اللہ کے لیے لگائیں. در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا شیوا. ہر نبی کو جوانی میں نبوت ملی, انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تیسرا سوال ہوگا, مالن میں نئی نقد صبح ہو, کہاں سے کمایا مال؟ وٹ واز یور سورس آف انکم؟ یہ سوال تو آج کوئی کرے ہی نہ. ہم مسلمانوں سے غیروں کی تو ہم بات ہی نہیں کریں. کہتے یہ نہ پوچھو کہاں سے آتا ہے. آج کے دور میں نہیں بچ سکتے, امریکہ میں رہ کے نہیں بچ سکتے, یورپ میں رہ کے نہیں بچ سکتے, اور اب تو پاکستان میں رہ کے بھی نہیں بچ سکتے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ انٹرسٹ نہ ہو اور ہم کھا لیں پی لیں اور شراب نہ بیچیں اور سٹور چل جائے؟ اور آج کون سی جاب ہے, کون سا بزنس ہے جس میں آپ کو جی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا؟ تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات. اللہ کہتے سود کا مٹھ مرے گا اور صدقے بڑھیں گے. صدقہ خیرات جس سوسائٹی میں عام ہوگا وہاں برکت ہوگی, وہاں کی اکانومی کبھی نہیں ڈوبے گی. لیکن آج ہم سسٹرز کو یہ چاہیے, ایک بہت بڑی وجہ یاد رکھیے, پیٹ میں جو لقمہ جاتا ہے نا, اس کا اثر عبادت پہ بھی آتا ہے, اس کا اثر آپ کے عمل پہ بھی آتا ہے. اگر کوئی کھانے کے بارے میں سیریس نہیں ہے نا کہ میرے پیٹ میں کیا جا رہا ہے, تو اس کی عبادت بھی سیریس نہیں ہوگی. اور آپ سب نے میرے سے زیادہ سنا ہوگا, 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی جب ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جاتا ہے. اور میں اکثر کہتی ہوں, جو لوگ بڑے دکھی ہوتے ہیں نا کبھی بچوں کے بارے میں کبھی کچھ, تو میں ان کو اس طرح تو نہیں کہتی, لیکن جہاں موقع مناسب ہو تو میں کہتی ہوں, سسٹر سوچیے کیا وجہ ہے آپ کے بچے نافرمان کیوں ہیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ جب رزق میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے نا, تو اس کا اصل اولادوں کی نافرمانی کی صورت میں ہوتا ہے. اور پھر چوتھا سوال ہوگا, من این انفق ہو, خرچ کہاں کیا؟ یہ تو ہم سب عورتوں کا ہی معاملہ ہے. کبھی خرچ کرتے وقت ہم نے سوچا کہ کہاں لگ رہا ہے؟ حساب دے سکتے ہیں؟ ایک بلب کے ساتھ کام ہو سکتا ہے تو ہم 10 بلب کیوں جلاتے ہیں؟ حضرت عثمان کا واقعہ 20 بار آپ نے سنا ہوگا, کہ اپنی بیوی سے صرف اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ جب ایک بلب کے ساتھ کام چل سکتا تھا تو 2 چراغ, بلب سے مراد چراغ, ایک چراغ سے گزارا ہو رہا تھا تو نے 2 کیوں جلائے؟ اور وہ شخص جو باہر کھڑا تھا کچھ سوال کرنے کے لیے سے وہ واپس چلا گیا, کہ اتنا کنجوس شخص ہے کہ اپنی بیوی سے اتنی سی بات پہ ناراض ہے تو مجھے کہاں دے گا. لیکن جب اللہ کے نبی کے کہنے پہ واپس بھیجا, جاؤ مانگو عثمان سے, تو کہا اچھا کچھ ہے یہ, ٹھہرو میں آتا ہوں. اندر گیا اور سونے کی اشرفیوں کی تھیلی لا کے دے دی. اب وہ شخص نہ رہ سکا, کہا یہ بات تو بتائیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ اپنی بیوی سے ایک چراغ جلانے پہ جھگڑ رہے تھے, میں نے مانگا آپ نے اتنی تھیلی دے دی. کہا اس لیے بھائی کہ اس چراغ کا بل میرے حساب میں ڈلنا تھا, مجھے حساب دینا تھا مالک یوم الدین کو, اور یہ جو میں دے رہا ہوں یہ میں انویسٹ کر رہا ہوں, میرا اللہ کا معاملہ, تو لے جا. جس وقت امت مسلمہ کے خرچ کرنے کا یہ انداز ہوگا, اپنی ذات پہ $1 خرچ کرتے ہو کم از کم 3 دفعہ سوچے آپ اپنے اوپر لیں یہ بات. میں اپنے اوپر الحمدللہ پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں ایسے ہی ہے میرا. 10 دفعہ سوچوں گی شاید پھر $1 کی لوں کہ نہ لوں, ضائع کر دوں گی, گزارا ہو سکتا ہے نہیں, کیا فائدہ, کیا کبھی نہیں سوچا کیا فرق ہے, لے لو پھینک دو. آج ہم ایک ٹیشو کی جگہ 4 پکڑتے ہیں اور ایک گلاس کے نیچے 2 گلاس رکھتے ہیں کہ یہ گرم ہے, اور ہوتا وہ سارا بےچارے لوگوں کی ڈونیشنوں کا مال ہے. کبھی آپ جا کے ٹوائلٹ پیپرز تو دیکھا کرے مسجدوں میں, جو ہماری مسجدوں میں جس طرح ہم بے دردی سے ضائع کرتے ہیں. ہم کہتے دیکھی جائے گی جو ہوگا, میں نہیں نان پکو, کھانا ضائع کتنا ہوتا ہے. جب بعد میں کھانے کے ٹریش بیگ وہ کالے رنگ کے باہر مسجد کے باہر, میرا لے 15-20-25 بیگ اتنے بڑے بڑے پڑے, یہ کہہ جی یہ ٹریش ہے, भाई ये क्या है, आपने पिया, आप दोबारा अपना ग्लास नहीं ले सकते? आप देखिएगा मैं आपके पास तो नहीं ये ग्लास छोड़ूंगी, मैं लेके जाऊंगी, मुझे पता है आपने फेंक देना। पानी की बोतल एक घूंट पिया, दो पिया, वहीं छोड़ दी। इतना हमने इस साल रमजान में इस बारे में बात की है, यकीन करें मैंने खुद अपने कानों से मस्जिदों में मिंबरों में बेचारे जो मैनेजमेंट वाले उनको कहते सुना है कि प्लीज अपनी पानी की बोतलें या तो साथ ले जाएं या उसको खत्म करें। हमें दुख होता है जब हम फेंकते हैं, हम कहते देखी जाएगी। $1 है भाई, $1 नहीं है, ये 100 रुपये है। और आज भी पाकिस्तान में 100 रुपये में मेरे हाल है 2-4 ईंटें तो आ ही जाती हैं जो किसी मस्जिद के अंदर लग सकती हैं। आज हम इतना इसराफ करते हैं, अल्लाह की पनाह। तो पांचवा और आखिरी सवाल जो क्यामत के दिन का है, माज़ा अमीला बीमा अल्लमा, जो इल्म मिल गया था उस पर अमल कितना किया, जो बातें पता है उसका क्या। आज इल्म का एक अलग खाता है, हम कहते हैं इल्म हम हासिल करेंगे, अमल कोई और करे, हम सारे काम हम ही करें, हम है ना इल्म दे रहे और ले रहे, अमल कोई और कर लेगा, नहीं। तो मालिक यौम दीन का एहसास बंदे को फिर शुतर बेमुहार नहीं छोड़ता, फिर वाकई इंसान फिक्र करता है। और जब आप देखिए कि अल्लाह की सिफात बयान हो गई, अब ऐसे लग रहे हैं ना दुआ मांगते हुए अल्लाह की सिफतें की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौम दीन, तो साथ ही फिर कहा या कनाबुद व या कनस्तीन, वो तो तू था ना, अब मैं क्या हूं, मैं तेरी बंदी। इसमें लफ्ज देखिए बंदगी आ रहा है, ना बुदू आइन बादाल, तीन चीजें होती हैं इसमें, गुलामी जिसमें आप कहें कि अपना आप किसी को अल्लाह का गुलाम समझना, और इसी तरह से एतात सबमिशन, यानी सबसे पहले अगर आप देखें तो वर्शिप के मानों में नमाज रोजा हज ये 1/3 ऑफ इबादा, फिर एतात रब को मानते हैं तो रब की भी माननी है, नमाज में कहते हैं या का नाबुदू और बाहर निकलते ही क्या कहते हैं, मुआशरे से डरना है, उनकी माननी है, खानदान से डरना है, उसकी माननी, उसकी माननी। जब बंदा या का ना बुदू कह देता है ना, तो फिर उसके बाद वो अल्लाह का बन जाता है, फिर अल्लाह से नहीं डरना, मुआशरे से नहीं डरना, खानदान से नहीं डरना। और वह या का नस्तईन, तुझसे मदद चाहती हूँ, बस मुझे तुझसे लेना। इब्राहिम बिन अदम का नाम आपने सुना होगा, अपने वक्त के ऐसे इंसान थे जैसे दूसरे लोग होते हैं, जरा हिदायत से उतरे हुए थे। एक दफा एक गुलाम खरीद कर लाए, घर आया, पूछा सुनाओ भाई क्या नाम है तुम्हारा, कहने लगा गुलाम की क्या औकात है, जिस नाम से आप पुकारेंगे वही मेरा नाम होगा। अच्छा, बड़ा अच्छा जवाब दिया। अच्छा क्या खाते हो, कहने लगा मेरी क्या औकात है, जो देंगे वही खा लूंगा। काम क्या करोगे, कहा जो आप कहेंगे, गुलाम की क्या औकात। बस ये 2-3 जवाब उनकी जिंदगी बदल गए, कहने लगे चंद पैसों का खरीद के लाया हूं तो हर बात में कह रहा है मेरी क्या औकात है, और एक मैं हूं जो दिन रात अल्लाह को कहता हूं या कना बुदू व या कना। लेकिन आप देखिए सारी बात का खुलासा, हम इसको रैप अप करते हैं। सूरत फातिहा हम सबको बंदगी सिखाती है, अगर हम दिन में 17 बार अल्लाह को ये कहकर कि या कना बुदू व या कनस्तईन, इसके बावजूद हम अमली जिंदगी में अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते, तो हमारा हाल तो उस एम्प्लॉय की तरह है कि जो बड़ी मुश्किल से जॉब ले और अगले दिन जब वो उसको थिंग्स टू डू का पर्चा दे तो क्या ये भी करना पड़ेगा, अच्छा सुबह 9 बजे आना भी पड़ेगा, अच्छा हिसाब भी रखना पड़ेगा। तो जो नमाज पढ़ते हैं ना उसके अंदर हम अल्लाह ताला से ये इकरार करते हैं कि अल्लाह हम जिस तरह तुझे मांगते हैं ना इसी तरह तेरी बात भी मानेंगे। तो जब इंसान को अपनी औकात समझ आती है ना कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो बंदी हूँ, गुलाम हूँ, आजिज हूँ, तो फिर वो अल्लाह से एक दुआ मांगता है, यही दुआ आज हम आखिर में मांगेंगे कि दीन सिरात अल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दे। ये सीधा रास्ता क्या है, दुनिया की कामयाबियों से गुजर कर आखरत की कामयाबी तक का रास्ता। जब दुनिया में हमें अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखाता है ना तो उसका नतीजा क्या होता है कि हमारी जिंदगी खूबसूरत होने लगती है। मुसलमान जितना अल्लाह को मानते हैं ना, उसके हुक्मों को मानते हैं, वो दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। इंशाल्लाह कल का जो हमारा दर्स होगा हम उसमें इस बात को थोड़ा मजीद डिटेल से देखेंगे कि दुनिया में हम मुसलमान कैसे कामयाब हों। हम एक लिस्ट तैयार करेंगे अपने कामों की कि किस तरह से हम दुनिया में भी कामयाब हों, चाहते हैं कि नहीं, और आखिरत में भी कामयाब हों। और ये अल्लाह ने सब कुछ हमें बताया। तो सिराते मुस्तकीम क्या है, सीधा रास्ता है, सीधा नहीं है, क्रेस क्रॉस है। आप सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, एकदम आपका वो राउंड अबाउट आ जाता है जहां से आप सिरातुल गई पे चल पड़ते हैं। अच्छे खासे आपने रमजान में इतनी नियतें की थी कुरान सीखने की, ईद की पार्टियों में सब भूल गया, कई लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो बाद में नहीं फिल कर पाते, तो सीधे रास्ते पे चलता चलता बंदा सिक्योर नहीं होता, क्योंकि ये बार बार यूं करके गुजरता है, यूं गुजरता है, फिर दूसरी तरह से दूसरा रास्ता जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्टिकल आता है। आप अच्छा काम करें उसके रास्ते में रुकावट आती है। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चलाए, फिर चलता ही रखे और मंजिल पर पहुंचाए। इसी लगा सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। देखिए इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है, आसान रास्ता नहीं मांगा, क्या मांगा? इनाम वालों का मांगा। इनाम किन पे हुआ? नबियों पे। चलिए आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे देती हूँ कि आप कसस-उल अंबिया में से हजरत इब्राहिम, हजरत नूह और नबी सल्लम, इन तीन नबियों की जिंदगी की कहानी पढ़ें, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि इनाम वाले लोगों की जिंदगी रूटीन लाइफ नहीं होती, उनकी जिंदगी अल्लाह के दीन के साथ चलती है। जब हम अल्लाह के दीन को प्रायोरिटी बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह हम नबियों के तरीके पे चल पड़ेंगे। सारा मक्का आपके गुन गाता था, सादिक और अमीन आपको कहता था, लेकिन जिस दिन आपने अल्लाह के रास्ते को खस किया तो काहिन, मजनू और दीवाना कहला दिया गया। तो इंशाल्लाह जब नबियों का ताल्लुक मांगते हैं तो हमने उसी मिशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस जो भी बात आज हुई इससे फायदा लेने और देने वाला बना दे। جزاك الله خير واسن الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين